ओके उसके बाद हमारे पास शॉर्ट केस में भी लेप्रेसी का पेशेंट आ सकता है। तो अगर हमारे पास शॉर्ट केस में लेप्रेसी का पेशेंट हो, जैसे कि मैंने पिक्चर शेयर की है, तो उसमें हम अपनी एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? तो चाहे कोई सा भी शॉर्ट केस हो ना, उसमें हमने हमेशा अपनी एग्जामिनेशन स्टार्ट करनी है फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ द लीजन। तो वो तो बेसिक स्टेप्स जो है वो हर लीजन के लिए सिमिलर ही होंगे। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इफ़ यू डोंट नो द केस। अगर आपके डिफरेंशियल्स जो है वो ठीक होते हैं, इवन आपके प्रोविजन डायग्नोसिस भी अगर ठीक नहीं है ना, यू कैन गेट पास्ट अगर आपका मेथड ठीक है। आपने जो है वो बिल्कुल अगर माइंड में कोई डिजीज नहीं आ रहे हैं, कोई एक डायग्नोसिस नहीं आ रही है, डजंट मैटर, जस्ट स्टार्ट विद द फ्लो। सबसे पहले अगर हमें कमांड मिलती है इस केस में कि एग्जामिन द फेस एंड डू द रिलेवेंट एग्जामिनेशन, तो आप पहले अच्छी तरह से नेकेड आई से इंस्पेक्ट करें, पूरे फेस को अच्छी तरह से देखें कि लीशन कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। उसके बाद फिर आपने टॉर्च से और उसके बाद हैंड लेंस से आपने एग्जामिन करना है। ये तीनों स्टेप्स जो है वो मिस नहीं होने चाहिए। फर्स्ट विद नेकेड आई, देन विद टॉर्च आपने डायरेक्ट लाइट देखी, टेंजेंशियल लाइट से देखा, फिर उसके बाद आपने हैंड लेंस से एग्जामिन किया। उसके बाद फिर आपने इंस्पेक्शन कंप्लीट करने के बाद के लीजन क्या है, व्हाट इज़ द सरफेस चेंजेस, कलर कैसा है, अप्रॉक्सीमेट साइज़ क्या लग रहा है और एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद आपने अभी तक फेस पे ही रहते हुए आपने अपनी पैल्पेशन स्टार्ट कर देनी है। सेम वही टेम्परेचर ग्रेडियंट चेक कर लिया, फर्स्ट ऑन द अनअफेक्टेड साइड एंड देन ऑन द अफेक्टेड साइड, फिर टेंडरनेस कर ली। जब आपने फील किया ना, फिर आपको उसकी कंसिस्टेंसी भी पता चल जाएगी, टेंडरनेस भी पता चल जाएगी। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मेजर द लीजन, मूव द हैंड ऑन द सर्फेस टू सी के इफ इट इज़ अ पैच, प्लाक, नोड्यूल्स हैं या नहीं। कुछ प्लाक्स ऐसे होते हैं जो सिंपल मतलब रेस्ड प्लाक होते हैं, कुछ नोड्यूलर प्लाक्स होते हैं। सो जब हम उसको फील करते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि उसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है, फर्म है, सॉफ्ट है, बॉगी है, फाइब्रोटिक है। यू आर गोइंग टू चेक द सर्फेस। उसके बाद अगर कोई स्केल है, सो वी आर गोइंग टू रिमूव द स्केल, और वो भी परमिशन लेने के बाद आस्क द एग्जामिनर दैट आई वुड लाइक टू स्क्रैप द स्केल। देन उसके बाद क्योंकि अपनी डिफरेंशियल्स में यहाँ पे हम सार्कोइडोसिस भी रखेंगे, तो इस वजह से हमने डायोस्कोपी भी कर लेनी है लीजन की। देन फिर उसके बाद हमने पिंच एंड स्क्वीज़ करके देखा और इसको टू डायरेक्शन में मूव करके देखा, तब भी हमें काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं उस लीजन के बारे में। इन लीजन्स में जो सबसे बड़ा लीजन नज़र आ रहा होगा, उसको आपने मेजरिंग टेप के साथ मेजर करना है। जस्ट कीप इन माइंड कि जब आप मेजर करेंगे, द मेजरिंग टेप शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ द स्किन। इसी तरह डायोस्कोपी भी जब हमने करनी है, तो आपने दो स्लाइस को एक साथ टेप करके आपने पहले उस पेशेंट को बताना है कि ये शीशे की स्लाइड है जिसको मैं आपकी जिल्द के ऊपर टच करूँगी, इसे आपको तकलीफ नहीं होगी। जिस साइड पे आपने अपनी स्किन पे टच करके डेमॉन्स्ट्रेट किया था पेशेंट को, आपने उसकी अपोजिट साइड से उस पेशेंट की स्किन के ऊपर टच करना है और फिर इसको डिस्कार्ड कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप टांडिप्रेसिव यूज़ करें, डायोस्कोपी के लिए स्लाइड्स यूज़ करें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कार्डेड। आपने इसको साइड टेबल पर नहीं रखना, आपने इसको डस्टबिन के अंदर डालना है। ओके फिर उसके बाद जब आपने लीजन की एग्जामिनेशन कर ली, अब हम ये देखते हैं कि एक्सटेंड कहाँ तक है। क्योंकि यहाँ पे हम लेप्रोमेटस लेप्रेसी सोच रहे हैं या कोई रिएक्शन सोच रहे हैं, तो उसमें हमने आईब्रोज के ऊपर ऐसे हाथ लगा के देखना है, आईज बंद करवा के आईलैशेस को देखना है, पूरे स्कैल्प में देखना है कि हेयर लॉस तो नहीं है, फिर ईयर लोब्स को ज़रूर आपने ऐसे टच करके देखना है कि वहाँ पर कोई इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं है, ईयर लोब्यूल्स को देखना है कि हैंगिंग ईयर लोब्स तो नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो लीजन के ऊपर ही रहते हुए आपने लीजन के अराउंड फिंगर फेर के ऐसे देखा कि कोई नर्व तो इनलार्ज नहीं है, और लीजन के ऊपर सेंसेशंस आपने चेक की फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अच्छा फिर उसके बाद फिर हमने ऑक्यूलर म्यूकोजा, कंजंक्टाइवा, फिर उसमें हमने कलर विजन, विजुअल एक्विटी इन अ फिगर ऑफ एच, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स नर्व्स को हमने चेक किया। फिर उसके बाद फिर हमने नेज़ल कैविटी अच्छी तरह से देख ली, ओरल कैविटी अच्छी तरह से देख ली फ्रॉम ऑल साइड्स की कोई लीजन हमें तो नहीं नज़र आ रहा। उसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि क्रेनियल नर्व्स हमने फेस के ऊपर ज़रूर करनी है, सेंसेशंस चेक करनी है। उसमें जो फिफ्थ नर्व है हमने सेंसेशंस के लिए चेक करनी है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स कर लेना है, पूरे फेस के ऊपर सेंसेशंस चेक कर लेनी है। और फिर उसके बाद फिर हमने जो बेल्स पाल्सी या सेवेंथ नर्व की एग्जामिनेशन होती है, जिसमें फोरहेड के ऊपर रिंकलिंग, क्लोज द आईज टाइटली और हवा, मुंह में हवा भरें, एटलीस्ट ये आप जल्दी जल्दी कर लेना। देन फिर उसके बाद हमने सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पैल्पेट कर लेने हैं। ये हमारे पास जो फेस जो कमांड थी ना कि एग्जामिन द फेस एंड डू द रेलिवेंट एग्जामिनेशन, ये कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे हमने अपनी डिफरेंशियल्स में तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल्स रखे, लेप्रेसी, उसमें भी लेप्रोमेटस लेप्रेसी या लेप्रेसी इन रिएक्शन हम कह सकते हैं, वो तो कंप्लीट एग्जामिनेशन के बाद हमें आइडिया हो जाएगा। देन फिर उसके बाद MF और सार्कोइडोसिस। तो बाकी जो कंप्लीट स्किन एग्जामिनेशन है उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट एग्जामिनेशन है वो हमें पता होने चाहिए। लेप्रेसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रेलिवेंट एग्जामिनेशन है वो ये है कि आपने सेंसेशंस ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न के अंदर और पेरिफेरल नर्व्स की जो पैल्पेशन है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्रेट ऑरिक्युलर नर्व्स, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व और उसके अलावा पॉपलीटियल नर्व, टीबियल नर्व, सूरल नर्व की जो पैल्पेशन होती है वो हमने कर लेनी है पेरिफेरल नर्व्स में। बाकी के रेलिवेंट पूरी स्किन एग्जामिन तो करनी ही है, मतलब ट्रंक, बैक, लिम्स के ऊपर, देन बटक्स को ज़रूर एग्जामिन करने MF के लिए भी और लेप्रेसी के लिए भी। उसके बाद अपने एरियाज़ ऑफ स्पेयरिंग के लिए देखना है, जो वार्मर एरियाज़ होते हैं यानी एक्जिला, ग्रॉइन, जेनिटेलिया, अच्छी तरह से एग्जामिन कर लेना है। जेनिटेलिया के एटलीस्ट परमिशन ज़रूर लेना है। देन फिर उसके बाद पूरी क्यूटेनियस एग्जामिनेशन कंप्लीट करके चेस्ट ऑस्कल्टेशन फॉर सार्कोइडोसिस, ऑल द लिम्फ नोड्स फॉर सार्कोइडोसिस एंड MF एज वेल, विज़ेरोमेगैली बोथ फॉर सार्कोइडोसिस एंड MF, और उसके बाद जॉइंट एग्जामिनेशन फॉर सार्कोइडोसिस। तो जब हमने ये सारे स्टेप्स कर लिए ना तो फिर हमारे पास जो है वो एग्जामिनेशन और रेलिवेंट एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है फॉर अ केस ऑफ लेप्रोमेटस लेप्रेसी या एनी काइंड ऑफ अ लेप्रेसी, इवन के कभी कभी हाइपरपिगमेंटेड पैचेस आ जाते हैं, तो फिर लीजन की एग्जामिनेशन तो वही रहेगी ना, चाहे लीजन जो भी होगा उसके डिफरेंशियल्स भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे इस केस के मुताबिक हमारे पास तीन डिफरेंशियल्स है, वो है लेप्रोमेटस लेप्रेसी या रिएक्शन में लेप्रेसी, अगर यस पेशेंट के फीवर भी आपने ज़रूर चेक करना, अगर लीजन टेंडर है तो फिर आपने जो ENL के लिए जो सारी साइट्स होती हैं वो जॉइंट एग्जामिनेशन, उनकी टेंडरनेस चेक करनी है, और फीवर के लिए टेम्परेचर ज़रूर लेना है, और MF और सार्कोइडोसिस, ये तीन डिफरेंशियल्स में जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट्स थे। आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग।